मेरे आत्मीय नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज सन 2017 के अगस्त महीने का आखिरी दिन है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राहुल लोधी अशोकनगर मध्य प्रदेश से और धर्मेंद्र कुमार दरभंगा बिहार से। तो राहुल और धर्मेंद्र, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के बाद अगस्त का महीना हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाएगा, लेकिन 2017 का अगस्त साल भर बाद 11 महीने बाद कह लीजिए अगस्त फिर से हमसे मुलाकात करने आएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सितंबर अक्टूबर 22 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अब बहुत कम वक्त रह गया है जब सच में हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। मित्रों, पूरी एकेडमी उन दिनों की बहुत ही व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रही है और यदि यही व्यग्रता आपके अंदर भी हुई तो दोनों की व्यग्रता मिलकर कुछ कमाल कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, हम सब आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप सबके स्वागत के लिए हम सब उत्सुक हैं। आप आइए और फिर मिल बैठकर बात करने का माहौल बनाइए। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय के बारे में। तो कल हम लोग अनुच्छेद 27 28 पर बात कर रहे थे, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यह अनुच्छेद लग रहा है, कल बात आधी अधूरी रह गई थी, तो आज हम मुख्य विषय के रूप में अनुच्छेद 27 और 28 पर बातें करेंगे। आइए अब हम न्यूज पर पहले बातें कर लेते हैं। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो मुझे कल के न्यूज में लगी है, वो चाहे वो रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, वह थी नोटबंदी के ऊपर, मोनेटाइजेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की और इसके बाद देश में आपने देखा कि किस तरह के विवाद भी हुए, पक्ष में भी बातें कही गई, आलोचनाएं भी की गई, स्थितियां जो भी रही हों। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कल एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि जो 1000 और 500 रुपए के नोट ही बंद हुए थे, बड़े नोट बंद हुए थे, तो जो 1000 और 500 रुपए के जो नोट थे जितने भी प्रचलन में थे, देखिए रिजर्व बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है, नोटबंदी के बाद उसमें से लगभग 99% जो करेंसी थी वो तो बैंकों में वापस आ गई, राइट। इसका मतलब है कि जो 1% करेंसी है केवल वह वापस नहीं आई है। अब 1% ये भी है कि अब कुछ कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ने अभी जमा नहीं किए, कुछ इस तरह की बातें पढ़ने में आई हैं, खैर हम मान लेते चलिए 99% करेंसी वापस आ गई, 1% नहीं आई है। इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मित्रों, आप देखिए कि नोटबंदी का पर्पस क्या था। नोटबंदी का पर्पस यह था कि जो भी ब्लैक मनी है लोगों के पास, जो काले धन के रूप में जमा है, वो बेकार हो जाए, क्योंकि जिनके पास काला धन होगा वो 1000 और 500 के नोट ही रखेंगे, है ना, 20-20 के नोटों के बंडल तो रखेंगे नहीं, वो बड़े रुपए रखेंगे। और अगर उनके पास वह काला धन है तो सीधी सी बात है कि वो उसे बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप बैंक में जमा करते हैं काले धन को, इसका मतलब है कि ये आपका व्हाइट मनी है आप मान के चल रहे हैं, और बैंक उसके बारे में आपसे पूछ सकते, मतलब सरकार पूछ सकती है कि भाई आपके पास ये पैसा आया कहां से, आप कारण बता दीजिए कि यहां से पैसा आया है, तो कोई बात नहीं वो व्हाइट मनी है, लेकिन अब आप अचानक कारण बताएंगे कहां से। अगर आपके पास पिछले रिकॉर्ड में वो पैसा नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि मेरे पास ये पैसा यहां से आया है, राइट। तो अगर 99% पैसा बैंक में चला गया तो देखिए ऊपरी तौर पर क्या दिखाई दे रहा है कि 1% पैसा ही सरकार के पास वापस नहीं आया है, इसका मतलब है कि 1% ब्लैक मनी थी, बाकी तो लोगों ने जमा कर दिया और उसका जवाब देने को वो तैयार हैं, हम सामान्य तौर पर ये मान करके चल रहे हैं। और आपने देखा कि इसी बात को लेकर के कल सरकार के ऊपर नोटबंदी की असफलता को लेकर के बातें भी कही गई और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया कि जब आप काले धन को खत्म कर ही नहीं पाए हैं तो फिर नोटबंदी एक तरीके से पूरी तरह से असफल रहा है, राइट। अब ये आपको बेसिक समझ में आ गई। अब आप देखिए कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि काले धन पर प्रतिबंध लगाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं था, वह तो उद्देश्य था ही, वह तो तात्कालिक उद्देश्य था, लेकिन इसके और भी बड़े उद्देश्य थे और वे उद्देश्य हमें प्राप्त हुए हैं। पहली बात हम उद्देश्यों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन है मित्रों, इसका क्या प्रभाव रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार अक्टूबर के एग्जामिनेशन के लिए, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, काले धन को आप कैसे समाप्त करेंगे, यानी कि जो ब्लैक मनी के रूप में जो करेंसी उनके पास होगी उसे वो बैंक में जमा नहीं करा पाएंगे, तो काला धन वो उस पैसे उस उन करेंसी की कोई कीमत रह नहीं जाएगी, तो अपने आप काला धन नष्ट हो गया, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं मिली, 99% पैसा बैंकों में पहुंच गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इससे टैक्स का जो बेस है, टैक्स देने वालों की जो संख्या है वो इससे बढ़ेगी, और उन्होंने बकायदे हमारे वित्त मंत्री जी ने आंकड़े भी दिए हैं कि किस तरह से जो टैक्स का कलेक्शन है सरकार के पास लगभग 25% बढ़ गया है, यहां तक कि टैक्स पेयर की भी जो संख्या है वो 26-27% या 25 भी ऑलमोस्ट मान लीजिए 25% उसमें बढ़ोतरी हो गई है, यह बात उन्होंने कही है। यानी कि ठीक है, तात्कालिक रूप से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चेतना आ गई कि भैया काला धन ज्यादा दिन का साथी है नहीं है, तो आप ज्यादा अच्छा है कि व्हाइट मनी के बारे में ही सोचिए, तो टैक्स देने लगेंगे, और टैक्स देने लगेंगे तो आप व्हाइट मनी करने लगेंगे, तो टैक्स किस का कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स पेयर का बेस भी बढ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि हमें कैशलेस सोसाइटी बनानी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि डिजिटल के माध्यम से पेमेंट करना सीखें, और उसमें भी काफी वृद्धि हुई है, डिजिटलीकरण भी काफी हुआ है। जब मेरी सामान्य तौर पर दुकानदारों से बात होती है मित्रों, मेरी आदत है कि इस तरह की चीजों के बारे में मैं उनसे पूछने लगता हूं, तो मेरी कल ही 2-3 लोगों से बात हुई, हम लोग एक पार्टी में थे, तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं वो, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके यहां जो अब सेल जो होती है, और काफी अधिक सेल होती है उनकी पर डे, तो उसमें 25% के लगभग अब जो पेटीएम और इन सब के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, और इससे उनको बड़ी राहत भी है, राहत इस मायने में कि अब वो कैश लेना नहीं है, गिनना नहीं है, फिर रात को उसको संभाल करके रखना नहीं है कि फिर से गिन के गड्डियां बनाओ, संभाल के रखो और अगले दिन जाकर के बैंक में जमा करो, तो इससे राहत भी मिली है। तो कम अगर उनके सेल में 25% डिजिटलीकरण उसके माध्यम से हो रहा है, तो ये सफलता है कि तात्कालिक रूप से 25% कम से कम तो डिजिटलीकरण हो ही गया। फिर उन्होंने आतंकवाद की भी बात कही कि किस तरह से आतंकवाद इससे नियंत्रित हुआ है, क्योंकि आतंकित घटनाओं में आप जिन युवाओं को लगाते थे तो उनको आप कैश में पैसा देते थे, आपके पास दुनिया भर का पैसा था, 1,000 और 500 के नोट थे, आप उनको पकड़ा देते थे, अब वो बिल्कुल कागज के टुकड़े बन गए हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, तो उनमें भी कमी आई है, राइट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, देखिए जो वित्त मंत्री जी ने कहा, और वो कन्विंसिंग भी है जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, ठीक है 99% पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। अब उन्होंने ये बताया है वित्त मंत्री जी ने कि इसमें से लगभग मोटे तौर पर 4.25 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें जो पैसा जमा हुआ है वो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, मतलब सरकार को लग रहा है कि भाई इन खातों में इतना पैसा आ कहां से गया। अब ठीक है, आप खाते में तो जमा कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी थी कि जब आप जमा करेंगे तब आप बताएंगे कि कहां से आया, ठीक है आप उस समय तो खाते में जमा कर दीजिए, लोगों ने अपने काला धन भी मान लीजिए अगर जमा कर दिया है, तो अब ये जो 4 लाख के करीब जो खाते हैं जिनमें पैसा जमा हुआ है, सरकार इनसे पूछताछ करेगी, और जब पूछताछ करेगी तब पता लगेगा कि इनके पास व्हाइट मनी था या ब्लैक मनी था, तो इतना मार्जिन तो हमें दे करके चलना ही होगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हम नहीं कह सकते कि 99% अगर पैसा आ गया है तो काले धन पर कोई नियंत्रण नहीं लग सका है, उन खातों से जब पता लगेगा कि सही में कितना नियंत्रण लगा, लेकिन एक बात तो पक्का है कि भविष्य में यह बहुत अच्छे परिणाम देगा। मित्रों, ये पहली जो खबर थी उसके बारे में था। जो दूसरी खबर इंपॉर्टेंट है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज में भी थी कि ओबीसी का आपको मालूम है कि जो क्रीमी लेयर है उसको बढ़ा के 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है, और अब इस सीमा में जो है ना आपके वो भी आ गए हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, और सीधे कह दिया गया कि जो ग्रुप ए की सर्विस में है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो इस का लाभ लेने से बाहर होंगे। ये बहुत ही एक व्यावहारिक कदम उठाया गया है। मित्र, 2 दिन पहले मैंने आपको एक लेख प्रोवाइड किया था राजकिशोर जी का, आपको अगर ध्यान हो 2 या 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक आयोग बनाया है जो उप श्रेणियां निर्धारित करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये सरकार की यही चिंता है ना कि ओबीसी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, तो उप श्रेणियों को चिन्हित कीजिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि 6 लाख से बढ़ा करके आपने क्रीमी लेयर को 8 लाख कर दिया, तो बोले इसका मतलब है कि पहले 6 लाख तक के लोग फायदा ले सकते थे जिनकी वार्षिक आय है, अब 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले फायदा ले लेंगे, तो वहां आपने उसकी सीमा को बढ़ा दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन दोनों में साफ साफ कंट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है, विरोधाभास दिखाई दे रहा है। मित्रों, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आपको इसी तरह के पॉइंट्स बस नोट करते जाने, पूरा आर्टिकल आपके काम का नहीं होता है, लेकिन पूरा आर्टिकल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये दो लाइन या दो तथ्य भी नहीं निकाल पाएंगे। तो लेखों को पढ़ते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, अनुच्छेद 27 और 28 पर। अनुच्छेद 27 की बात मैंने कुछ की थी फ्रेंड्स, उसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि अनुच्छेद 27 में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार किसी भी धार्मिक कार्य के लिए टैक्स नहीं ले सकती, लगा सकती, और जो वो टैक्स लेती है उसे किसी धार्मिक कार्य में आप यूं कह लीजिए कि व्यय नहीं कर सकती, किसी पर्टिकुलर धर्म के उत्थान के लिए, पर्टिकुलर धर्म याद रखिए, धार्मिक उत्थान के लिए, उसके रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकती। इसके बैकग्राउंड में आपको कल बता चुका हूं, राइट। अब आप देखिए कि किसी विशिष्ट धर्म की बात कही है, यानी इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ भी नहीं करेगी। इसके कहने का मतलब है कि अगर वो करती है तो फिर वो करों का जो प्रयोग है वो सभी धर्मों के रखरखाव के लिए उपयोग कर सकती है, किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं। पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन बारीकियों से चूक हो जाएगी आपकी, तो आपका विश्लेषण गलत हो जाएगा, खासकर मेंस में और प्री में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो स्टेटमेंट दे दिए, पहला स्टेटमेंट दे दिया कि सरकार अपने धर्म, अपने किसी भी विशिष्ट धर्म के रखरखाव के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये सही हो गया। फिर ये भी हो सकता है कि वह इन कलेक्टेड कर संग्रह का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कर सकती है, सभी धर्म अगर आ गया तो वो कर सकती है। लेकिन एक ही बात और याद रखिएगा कि इसी अनुच्छेद 27 में है कि लेकिन वो शुल्क लगा सकती है, धर्म विशेष पर शुल्क लगा सकती है। इसका मतलब है जैसे तीर्थयात्री, आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई तीर्थ स्थल है, वहां पर सरकार कोई शुल्क ले रही है, तो उसका पर्पस ये होता है कि उस शुल्क से वो वहीं के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देगी, उसका रखरखाव करेगी या उसका विकास करेगी, तो ये शुल्क है, ये टैक्स नहीं है। तो सरकार ये काम कर सकती है, तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है। अब फ्रेंड्स, मैं आता हूं अनुच्छेद 28 पर। देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 ये कहता है कि ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखिए सरकारी स्कूल आप कह लीजिए, सरकारी कॉलेज आप कह लीजिए, तो अनुच्छेद 28 बहुत साफ तौर पर कहता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो राज्य के हैं, है ना, जिन्हें राज्य पैसा देती है, राज्य ही जिनका पूरी तरह से संचालन करती है, उन इंस्टीट्यूट में, उन संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, वो पंथ निरपेक्षता की बात करती है, जिसके बारे में अब धर्म निरपेक्षता शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया, अदरवाइज संविधान में जो शब्द है ट्रांसलेटेड वर्ड जो है सेक्युलरिज्म का, वह पंथ निरपेक्षता है, लेकिन अब धर्म निरपेक्षता दोस्तों चल गया है, तो आप यूज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन याद रखिए कि यह केवल राज्य द्वारा पोषित संचालित संस्थानों में है। लेकिन ऐसे भी संस्थान है, आप देखिए शिक्षण संस्थानों को आप देख लीजिए कि जो धार्मिक संगठनों ने बनाए हैं, किसी ट्रस्ट ने बनाए हैं, तो राज्य उनको मान्यता देती है, क्योंकि वो जो डिग्री देंगे उस डिग्री की वैलिडिटी तो तभी होगी ना जब राज्य उसे मान्यता दे, वो बकायदे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, सरकार उनको मान्यता देगी, सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे, राज्यों के बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे, ये क्या करें। तो मित्रों, ऐसे संस्थान जो किसी ट्रस्ट के तहत बनाए गए हैं, किसी ग्रुप ने बनाए हैं, चाहे वो धार्मिक समूह ही क्यों ना हो, उनमें धार्मिक शिक्षा दिए जाने की मनाही नहीं है। याद रखिए, यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बारीकी है वो इस बात की है कि फंडिंग पूरी तरह से ट्रस्ट की है, उस समुदाय की है, उस धार्मिक समुदाय की है। राज्य ने उसकी डिग्री को केवल मान्यता भर दी है। ऐसे संस्थानों को यह अधिकार है कि वो अपने यहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, बल्कि इस बात का भी उनको अधिकार होता है कि वो अपने धर्म के लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रख सकते हैं। इस तरह के जो संस्थान बनते हैं, जो समुदायों के द्वारा बनाए जाते हैं, ट्रस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, देखिए उसका पर्पज यही होता है कि उनके अपने समुदाय के लोग शिक्षित हो सकें, विकसित हो सकें, उनके विकास के लिए वो कुछ कर सके। तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा करेंगे, और यदि वे ऐसा करते हैं तो वो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, वो संविधान विरुद्ध नहीं है। तो मित्रों, अनुच्छेद 27 का संबंध देखिए टैक्स लगाने से है। जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो फिर इसी तरह से रिवाइज करते हैं, है ना, फिर उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बेस को समझ लेने के बाद फिर हम एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाते हैं। तो अब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं कि जो आर्टिकल 27 है उसका संबंध इस बात से है कि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका उपयोग धार्मिक, विशिष्ट धर्म के रखरखाव के लिए, व्यवस्था के लिए, उत्थान के लिए नहीं कर सकती। जबकि जो अनुच्छेद 28 है उसका संबंध इस बात से है कि जो भी सरकार के द्वारा पोषित संस्थाएं होंगी, शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर किसी ट्रस्ट ने बनाया है, भले उसका जो प्रशासन है वो राज्य कर रहा हो, उन्हें धार्मिक शिक्षा न देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, वो ऐसा कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। बस इसके, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर आप इस टॉपिक पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा प्री में या मेंस में, आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आंसर देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मित्रों, आज के न्यूज के बारे में तो बस इतना ही, और जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है, मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। अब मैं अंतिम चरण में दोस्तों सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं। मोहन पाटीदार भोपाल से, निखिल गौतम कोटा राजस्थान से, अंजनी तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, दिव्येश प्रताप सिंह सतना मध्य प्रदेश से, बिंदु जौनपुर उत्तर प्रदेश से, विशाल जमशेदपुर से, प्रज्ञा श्रीवास्तव रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, चंद्रदेव कश्यप धोबही उत्तर प्रदेश से, धर्मेंद्र पटेल और नरेंद्र, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।